الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 22ویں پارے کے چیزیں چیزیں مضامین کا جائزہ لیں گے. 22واں پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ احزاب جاری ہے، اس کا کچھ حصہ اس کے اندر بھی موجود ہے. اس سے پہلے ہم جیسے ہم نے کل اس کا جائزہ لیا کہ یہ سورت اہم معاشرتی احکامات کے اوپر مبنی ہے، اور معاشرتی احکامات کے ساتھ ساتھ اس میں آئلی احکام جو ہیں، جو فیملی سے متعلق ہوتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے. پھر سماجی اور عسکری، سیاسی اور اجتماعی امور کے احکام جو ہیں ان کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور بڑی کمپریہنسو اور ایسے جیسے پیکڈ ہے یہ صورت احکامات کے ساتھ. تو اس میں پھر امانت کا ایک ذکر ہے کہ جو ہے صورت کی جو ہے چار، بلکہ چار آیات اس صورت کی ایسی ہیں جن کا ذکر، جن کے اندر امانت کا ذکر ہے. تو اس سے امانت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم ایک آیت کے حوالے سے بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں جس میں اس امانت کا ذکر کیا گیا ہے. معاشرتی احکام کے اندر ہم نے کچھ کل جائزہ لیا تھا، اور کچھ میں کہ یہ ہیں کہ عورتوں کو جلباب کا حکم دیا گیا ہے، کہ وہ جلباب کا مطلب ہے کہ ایک بڑی چادر جو ہے وہ بالعموم جس کی اوڑھنی بنا کر جو کور کر لے تمام جو ہے وہ جسم کو، اوپر کے جو جسم ہے اس کو کور کر لے. تو یہ جلباب ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب عورتیں ظاہر باہر نکلیں گھروں سے تو جو ہے اس کا حکم ہے. پھر گھروں میں پردے کا انتظام ہو، یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ باہر سے آزادانہ طور پر اندر گھر کے اندر نہ آ سکیں یا نہ جھانک سکیں. تو اس کے لیے اگر گھروں کے اندر باقاعدہ دروازہ نہیں ہے تو بھی پردے کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے، گھروں کے دروازے کے اوپر یا سامنے کوئی چیز لگا دی جائے. پھر بتایا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے بناؤ سنگھار جو ہے، بناؤ سنگھار کر کے اس کی ایگزیبیشن، اس کی جو ہے ممانعت کی گئی ہے. اور پھر آواز نکالنے والے یا متوجہ کرنے والے جو زیور ہوتے ہیں، جو ان کے جو ہے وہ عورتوں کو پہننے کی جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ نہ پہنے. ظاہر ان کے اندر جو ہے وہ اس سے ظاہر ہے، اس کی کیفیت سے ظاہر ہے کیوں منع کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ظاہر فتنہ ہے. دعوت کے بغیر کھانے کی محفل میں شریک نہ ہوا جائے، اس کا بتایا گیا ہے. پھر خاص طور پر ایک حصہ اور متبع حصہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. جو زینب، آپ کو اس صورت میں پہلے حضرت زید کے بارے میں بتایا گیا ان کا نام لے کر کہ حضرت زید کے نکاح میں تھی، لیکن ان کا وہاں پہ نباہ نہیں ہو سکا. تو جب ان کی طلاق ہو گئی تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ زینب کے ساتھ جو ہے نکاح کریں. چونکہ حضرت زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اس سے پہلے کہ جب منہ بولا متبنا جو ہے وہ اس کی جو ہے ممانعت کی کر دی گئی، کہ منہ بولے بیٹے جو ہے وہ حقیقی بیٹوں کی ممانعت نہیں ہے، جیسے ہم نے کل دیکھا تھا اور اس صورت کے اندر ہی آیا ہے. تو پھر اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی جب کہا کہ حکم دیا گیا، تو آپ کو کافی اس بارے میں جو ہے ظاہر ہے آپ کو ہچکچاہٹ تھی، ہیزیٹیشن تھی کہ جو ہے یہ ایک بہت بڑے طوفان کا جو پیش خیمہ ہے. اور بالکل وہی ہوا کہ نبی اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا تو پھر یہود نے اور منافقین نے طوفان کا ایک جو ہے پروپیگنڈے کا ایک طوفان تھا جو انہوں نے کھڑا کر دیا اس سوسائٹی کے اندر، کہ دیکھیں جی انہوں نے منہ بولے بیٹے، جیسے بہو ہوتی ہے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. تو اس کا قرآن میں بڑا زبردست جو ہے وہ اور بڑا کیٹاگوریکلی ایکسپلیسٹلی اس کا جواب دیا گیا ہے. اور پھر جو ہے منافقین کا جو کردار تھا اس کے اندر، یعنی جھوٹی افواہیں پھیلانا اور یہ معاشرے کے اندر انتشار برپا کرنے پہ انہیں قتل کرنے اور انہیں جلا وطن کرنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے. مسلمانوں کو بنی اسرائیل جیسا رویہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اذیت نہ پہنچائیں جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں ذہنی طور پر تکلیف دے دیتے ہیں، ان کو تو جسمانی طور پہ بھی جو ہے اس طرح ان کو تکلیفیں دی ہیں. تو یہ جو ہے وہ بات یہاں پہ ان کو بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد مخلص صحابہ کرام کے کردار پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ منافقین کے برعکس जो है ये तो मुनाफिकीन के किरदार थे, इस तरह जो मुखलिस लोग थे जो बिल्कुल खालिस अल्लाह ताला के लिए, उसके रसूल के लिए और उसके मुती और फरमाबरदार, उनके किरदार पे और मुसलसल जो है ये मुखलिस उनके बताया गया है कि जब उन्होंने ये जंगे अहजाब की बात है कि उन्होंने जब लश्करों को देखा, हालांकि इसमें जो मुनाफिकीन का किरदार था वो बिल्कुल जो है वो आस्तीन के साम का था, और इसमें जो है वो मुसलमानों के लिए कोई सपोर्ट भी जो है अंदरूनी तौर पे भी जो मौजूद थी, जैसा कि मुसलमानों को उनके साथ एक मुआहदा था यहूद के साथ भी, तो यहूद ने भी इनकार कर दिया था साथ देने से, तो बड़ा सख्त वक्त था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई, साबित कदम होने पर फरमाया कि जब उन्होंने लश्करों को देखा जो है जो उनपे चढ़ आए और चढ़ दौड़े, तो फिर उन्होंने जो है ये इसी की बात की कि ये जो अहजाब है कन्फेडरेट्स है, तो बताया कि उनका फिर ईमान जो है वो ज्यादा हो गया और बढ़ गया, और उन्होंने कहा यही तो वो है अल्लाह का वादा जो उसने किया है कि ये लोग इस तरीके से आएंगे उसको मिटाने के लिए, तो उस पर साबित कदम रहे, इसका जो है जिक्र किया गया है। फिर इंसान को जमीन पर खलीफा होने की जो अमानत दी गई है, जो बख्शी गई है, और उसका फिर इंसान ने जो उसको कबूल किया है, उसका खास तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र फरमाया है, फरमाया कि इन्ना अरदना अलस्समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलना वअशफकना मिनहा वहमलहा अल इंसान इन्नहू काना जलूमन जहूला। तो ये यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है इरशाद कि उसने ये जो खिलाफत की और जमीन पे खलीफा होने की अमानत थी, तो उसने ये जमीन व आसमान के सामने पेश की और पहाड़ों को पेश की और हर चीज को पेश की। तो ये अमानत जो थी, ये हर एक ने इस अमानत की जिम्मेदारियों को देखते हुए और जो उसकी एहतसाब था और उसका जो हिसाब लिया जाना था, उसके पेश नजर उन्होंने इस खिलाफत को और इस जिम्मेदारी को और इस अमानत का बार उठाने से जो है वो माजरत की अल्लाह ताला से। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान जो है उसने जो है बड़ा कमजोर होते हुए भी इसको 5-6 फुट के इंसान ने इसको जो है कबूल कर लिया, और बड़ा इंसान जो जालिम और जाहिल जो है वो वाकया हुआ है, दरअसल ये उस जिम्मेदारी के हवाले से एहसास दिलाया गया है। और ये जो इस ये याद रहना चाहिए कि ये जो जिम्मेदारी है ये अल्लाह ताला के बालातर होने का इकरार है कि अल्लाह ताला इस कायनात की सबसे बालातर हस्ती है और उसी का हुक्म है और उसी की हाकिमियत है और वही माबूद है और वही रब है, और उसके अहकाम की इताअत का इकरार करना, और ये उसकी अमानत का जो है वो जिक्र है कि ये जो अल्लाह ताला का खलीफा है जमीन के ऊपर, ये वो सारी चीजें बजा लाएगा, ये अल्लाह ताला की बालातरी और बालातर होने का इकरार करेगा, और उसी के बात को और उसी के हुक्म को और उसी के लफ्ज को यहाँ पे नाफिज करेगा, और उसके अहकाम जो उसको पहुंचते हैं उसकी इताअत करेगा, और ये वो काम करेगा। और अगर उसने फिर उसको उसने चॉइस भी दी है कि जो बेशक ना करना चाहे इनकार, वो इनकार कर सकता है, सरकशी कर सकता है, बगावत कर सकता है, लेकिन फिर जब वो अल्लाह के हुजूर जो पेश होगा तो फिर ये जो है उसको उसका हिसाब देना होगा इन जिम्मेदारियों का, इस अमानत का। तो ये वो जिम्मेदारी का बोझ है जिसकी तरफ यहाँ पे जिक्र किया गया है कि इंसान को जालिम और जाहिल इस मानों में है कि उसको जिम्मेदारी अता कर दी गई है, इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा उसको सलाहियतें अता की गई हैं, उसको जो है वो कुछ अता किया गया जो दूसरी मखलूक को नहीं दिया गया, और इसकी बिना पे उसने तमाम मखलूक को और चीजों को मुसख़र अल्लाह ताला ने उसके लिए कर दिया है, और उसने इंसानों को अपने वसायल में लाता है और इस्तेमाल में लाता है, लेकिन वो उसकी अमानत का हक अदा नहीं कर रहा, तो बहरहाल ये उसके साथ मामला ऐसा होगा, अल्लाह ताला के सामने उसको जवाबदेह होना होगा, और फिर इसी की बिना पे उसके साथ मामला किया जाएगा। तो ये बहुत अहम बात है इस हवाले से। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना का जिक्र है, तो याद रख लेना चाहिए कि हम इसका लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के तरीके तरीके में और आपके आपके किरदार के अंदर लोगों के लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो ये हम आमतौर पर इसका जिक्र करते हैं, लेकिन इसकी जो इसका जो अहमियत है और इसकी जितनी जरूरत है और उसका एहसास जो है हम इसे ही तौर पर कम होता नहीं है, हम आमतौर पर सीरत के जलसों में और उनमें इसका जिक्र करते हैं, लेकिन याद रख लेना चाहिए कि ये सूरह अहजाब और अहजाब के वाक़े और अहजाब की जंग के दरमियान में अल्लाह ताला जिनका जो जिसकी तफसील बता रहा है उसकी, तो वहां के दरमियान में अल्लाह ताला जो है बता रहा है कि इस रसूल के लिए, इसके किरदार के अंदर, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में तुम्हारे लिए बेहतरीन। जब ये वो वक्त था जब आप सारे लोगों के साथ खंदक के अंदर, एक गढ़ों के अंदर जो है वो लोग मजदूरों की तरह सारे जो है वो खोद रहे थे, खंदकें खोद रहे थे, और हर एक ने अपनी कुदाल लेके अपना हिस्सा जो उनका जो जितना भी उनको दिया गया था खोदने के लिए, उनमें से हर कोई खोद रहा था, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ मौजूद नीचे गढ़ों के अंदर ये खंदकें खोद रहे थे। और जब लोगों से जो है वो पत्थर बड़े आ जाते थे, टूटने नहीं थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते थे तोड़वाने के लिए। और फिर जो है वो लोग इतना शिद्दत का, वो कहत का जमाना था, और राशनिंग का जो है वो इस्लामी लश्कर के लिए राशनिंग थी, और दो तीन खजूरें और कुछ पानी थोड़ा सा जो है वो मिलता था एक दिन के लिए, तो वो हालत थी। और कई जो है फाकों पे मुश्तमिल थे लोग होते थे, और जो रसूल सल्लम के पास लोग आए कि या रसूल अल्लाह देखिए मैंने जो है वो पत्थर बांध रखे अपने पेट पे कि पेट साथ चिपक गया है, तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए मैंने अपने पेट पे पत्थर बांध रखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज का एक पल्लू उठाया और दिखाया, मैंने दो पत्थर बांध रखे, ये है आपका उसवा हसना जिसका हम जिक्र करते हैं कि इस दीन की खातिर आपने ये काम किए हैं, आपको इन चीजों से गुजरना पड़ा है, और यही वो वक्त था, यही वो जंग था, जंग थी। आपको याद रहनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग का जोर और दुश्मनों का इस कदर प्रेशर था कि इस कदर जो है वो दुश्मन हमलावर इस तरीके से हो रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार नमाजें मुसलसल कजा हुई हैं इसके अंदर, और फिर आपकी जुबान मुबारक से कुछ ऐसे अल्फाज निकले हैं इस पे जो है अल्लाह ताला की गिरफ्त हुई है कि ये जो है जो हिदायत का मामला है ये अल्लाह ताला के हाथ के अंदर है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, ये नुक्ता जो है गौर करने का है कि जब जब कुरान करीम ने, जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल के अंदर तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, तो देख लेंगे ये उसवा किस उसवे की बात की गई है। ये दीन को सरबुलंद करने के लिए आप इन मराहिल से गुजरे हैं जब कई कई दिनों का फाका होता था आपको और आपके साथियों को, और आपको खाने के लिए जो है एक या दो खजूर पर डे जो है वो मिलती थी जो आपके साथियों को, और फिर उसके साथ उन्होंने इस दीन को जो है वो बरकरार रखा है और कायम किया है और दीन के लिए काम किया और जिहाद किया है। तो ये वो उसना उसवे हसना है। तो हम जो है हमको सोच लेना चाहिए कि उसवे हसना और आपकी जिंदगी की सारी जिंदगी पे मुहित जो आपका उसवा है कि इस दीन को सरबुलंद करने के लिए मेरा किस कदर कंट्रीब्यूशन है, मैं किस कदर इस उसवे के ऊपर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के ऊपर जो है वो चलता हूँ। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेहतरीन उसवे हसने की पैरवी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद सूरह सबा है, ये 4 से 5 नबी में उतरी है, और इसमें मुसलमान जो है वो कौम सबा की मुनासबत से है, ये नाम जो है सबा आपको पता है, सबा एक कौम थी यमन की, और जो जो है जो आज के मौजूदा शहर सना सना है उसका दारुल हुकूमत, और उस हजर मौत के दरम्यान में ये शहर कौम आबाद थी, और कौम तुबा भी यही यमन की कौम थी जिसका कुरान में जिक्र है, वह कौम तुबा, ये जो है ये भी इसी कौम सबा में से जो है वो आई है और इन्हीं में से थे। कुरैश को कौमे सभा का अंजाम बताया गया है और उसे डराया गया है कि तुम जिस तरीके से इस रविश पे चल रहे हो, तकजीब की रविश पे तो और नाशुक्री की रविश पे, अल्लाह ताला ने तुम पर किस कदर नेमतें जो है वो तुम्हें अता की हैं, और नाशुक्री की रविश अगर तुमने जारी रखी तो फिर तुम्हारे साथ भी अजब नहीं कि कौमे सभा का मामला हो। तौहीद और माद जो है, यानी माद का मतलब है लौट आना दोबारा, यानी कयामत के रोज इंसान का खड़ा होना अल्लाह ताला के हुजूर दोबारा जिंदा होकर और अपने अमाल का हिसाब देना, ये मुआद का अकीदा कहलाता है। इस पर ईमान की दावत दी गई है। मुशरिकीन मक्का के आप पर एतराजात बहुत सारे जो करते थे कि आप कैसे हैं, कि आप कैसे हो सकता है कि एक रसूल को इंसान बनाकर भेज दिया गया हो, और कभी कहते थे कि ये जादू है और झूठ है, और कहते थे कि कोई आखरत नहीं आनी, ये कयामत वयामत कुछ भी नहीं आनी, ये ऐसी सब ढकोसले, तो इन सब का जो है वो जायजा भी लिया गया है, इनका जवाब बड़े मुदलल अंदाज के अंदर दिया गया है। इसके बाद फिर अवाम और लीडरशिप की बात इस सूरत के अंदर भी आई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अवाम और लीडरशिप का मामला कुरान के अंदर किस शब्द से जो है वो आया है, और इसकी वजह जो है आप भी जान लीजिए कि इसकी वजह ये है कि अवाम की अक्सरियत जो होती है वो लोगों के पीछे चलने वाली होती है, लीडरों के पीछे चलने वाली होती है। तो जिस कदर जैसे लीडर होंगे तो फिर अवाम की अक्सरियत जो है उनके पीछे, आपको पता है कि वो अवाम का लनाम वाली बात है कि वो बिल्कुल अंधाधुन और अंधी पैरवी और अपने जो है वो लीडर की हर चीज जो है उसको वो बस जो है वो ऐसा साबित करने में तुले होते हैं। तो ये वो जो चीज है, ये जो रविश है, अंधी तकलीद की रविश जो है, इसको कुरान ने कंडेम किया है। और फिर यहाँ पे मगरूर और मुतकब्बिर लीडरों का जिक्र किया है, और फिर जो उसको फॉलो करने वाले थे, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनको मुस्तदफीन कहा गया। ये बड़े वीक लोग होते हैं, ये मेंटली भी वीक होते हैं, और ये जो है किसी चीज को सही तौर पर, मारूजी तौर पर उसका तजिया करने की सलाहियत से भी आ रही होती है, तो ये मुस्तदफीन है इस लिहाज से, तो उनका जिक्र किया गया है। और कयामत के रोज इनके मकालमे का फिर जिक्र है, और उनकी पैरवी करने वाले ये लोग जो आज अपने लीडरों की हर चीज को बस ऐसे जो है वो बना के भेजते हैं जैसे ये सुनहरी अकवाल हैं, तो फिर ये जो है वो कयामत के रोज जो है बड़े मैं कि इनकी पैरवी करने वाले बड़े शर्मिंदा होंगे, लीडरों को मलामत करेंगे वहां पे कि तुम खुद जो लीडर खुद इनको मलामत करेंगे और वो इनको मलामत करेंगे, और लीडर इनको कहेंगे कि देखो तुमने खुद अपना के अकल इस्तेमाल करते, हमने तुम्हें रोका था कि अकल इस्तेमाल ना करो। हर फिर इससे पता चलता है कि हर शख्स अपने किए का खुद जिम्मेदार होगा, और वो जो कुछ भी उसने किया है वो वहां पे जो है वो भुगतेगा। तो इस लिहाज से जो है ये, अगरचे ये जो मक्का की लीडरशिप थी और उनके जो अवाम थे तो उनकी बात की गई है, लेकिन ये बिल्कुल तमाम तनाजुर के अंदर और तमाम आने वाले वक्तों के अंदर और हर जगह पे ये अप्लीकेबल होगा कि लोगों को अपनी जो है वो दिखना चाहिए कि किस किस्म की लीडरशिप की वो पहली करें, क्या वो चाहेंगे, और बड़ा सवाल जो है उस पर ये रख के देखें, उसका एक लिटमस टेस्ट है, क्या वो चाहेंगे कि उनका अंजाम आखिरत के अंदर इस लीडर के साथ हो। अगर तो ये जवाब हाँ में है तो ठीक है, उसके साथ खड़े हो जाएं, और अगर जवाब ना में हो तो फिर जो है ये बिल्कुल गलत लीडरशिप की जो है वो चॉइस की गई है। लिहाजा जो है इस कुरान ने इसको बार बार कितनी पिछली सूरतों के अंदर मुसलसल इसको हाईलाइट किया है। फिर मुतरफीन जो है, जो एलीट्स हैं, जो वेल ऑफ पीपल हैं, लोग होते हैं किसी सोसाइटी के, हाई क्लास जो होती है, फरमाया गया कि यही लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो है वो फायदा उठाने वाले सिस्टम से, उस सिस्टम के जो स्टेटस को बरकरार रखने वाले होते हैं, लिहाजा कोई भी सिस्टम के अंदर तब्दीली के ये सबसे पहले मुखालिफ होते हैं। इस तरह जब हक आता है तो हक के भी ये सबसे पहले मुखालिफ खड़े होने वाले होते हैं। तो ये इसलिए कि ये इनके मफादात और इनके जो चीजें जिससे ये तमत्तो हासिल कर रहे होते हैं उन पे जो इन जद पड़ती है, तो ये हक का हमेशा इनकार करने वाले होते हैं, इल्ला माशाल्लाह विद सम एक्सेप्शंस। अले दाऊद, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी आल से नेमतों पर जो अल्लाह ताला ने उनका उन पर अता की थी, उनसे कहा था कि शुक्र का मुतालबा किया गया है कि अल्लाह ताला का इन नेमतों पर शुक्र अदा करें, और अगरचे वो शाकिर ही थे बिलाशुबा, लेकिन इससे शुक्र की जो अहमियत वाजे होती है, और इसमें खास तौर पे सूरह सबा के अंदर शुक्र का मजमून बहुत नुमाया तौर पर वाजे आया है, और इसका जिक्र फिर इसको जोड़ा गया है कौम सबा से भी, और उससे भी शुक्र का जो है मुतालबा किया गया था कि अल्लाह ताला ने ये कौम जो थी जब यमन के अंदर, तो अल्लाह ताला ने इनकी सरजमीन को नहरों और पानी की मौजूदगी वाफिर मौजूदगी से ये इनकी सरजमीन जन्नत नजीर हो गई थी, अगरचे वहां पर कोई दर्जा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जो बात जो समझाई और सुझाई, और वो ये थी कि ये पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे उनके छोटे छोटे डैम बनाकर पानी का, बारिशी पानी का उसको रोक लेते थे, और बाद में फिर अपने इलाकों को ऊंचाई से, जाहिर ये पहाड़ों पे होती थी तो फिर नीचे नहरें निकाल कर उनको सैराब करते थे, और इनका सबसे बड़ा डैम जो था जिसके जहाँ पे इसी जगह इसी सूरत के अंदर जिक्र है, वो मारब डैम था, या सदे मारब या सैल मारब ये जो है वो था वहां पे, वो डैम सबसे बड़ा डैम इनका था जिसके अंदर बहुत बड़ी और बड़े तवील जमाने से इनकी इन्होंने बनाकर, और इनको ये खास तौर पर डैम बनाने की टेक्नोलॉजी और ऊंची इमारत बनाने की जो है अल्लाह ताला ने इनको जो है ये अता की थी ये टेक्नोलॉजी, और जिस टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े माहिर थे, तो फिर अल्लाह ताला ने इनसे इस जो है जाहिर है ये जो फिर पानी की वाफर मौजूदगी की वजह से जाहिर उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा मईशत का दारोमदार ज़राअत पर होता था, तो फिर जो है उनसे उनके उनके पास बड़ी जो है वो खुशहाली थी, उनके पास बहुत ज्यादा पैदावार थी, और उनकी जीडीपी और उनके सब कुछ जो है पर कैपिटा हर चीज बड़ी हाई थी, तो अल्लाह ताला ने उसे शुक्र का मुतालबा किया। लेकिन उन्होंने फिर कुफरान किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हमने उन पर वो जो जो डैम था जो इतने अरसे से कायम था और जिसकी वजह से वो खुशहाली थी, और वो बड़ा डैम जब टूटा तो फिर सारे छोटे मोटे डैम्स और उसके आगे आबादियों को और जमीनों को वो लेता हुआ जो है वो बिल्कुल उसको तबाह बर्बाद उसको कर दिया, और फिर वो जमीनें ऐसे बंजर हो गई जो सरसब्ज और शादाब और जन्नत की एक मिसाल जो है वो पेश किया करती थी कि उनके ऊपर झाड़ झंकार और उनके ऊपर वीड्स और ये सब कुछ उगने उगाए, और वो कौम बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फजअलना हुम अहादीसा वमज़्ज़कना हुम कुल्लु मुमज़्ज़क, हमने उनको अफसाना बना डाला। ये जो कौम थी बड़ी तवील अरसे से बड़ी जो है खुशहाली से मुतमत्ते हो रही थी, हमने उनको फसाना एक माजी की एक जो है कहानी बना डाला, और उन्हें फिर तितर बितर पारा पारा कर दिया उन्हें, हम सब कुछ जो है कुछ भी ना बचा उनका। तो अजीज बहनों और भाइयों, इससे हमें पता चलता है कि ये जो नेमतें किसी कौम के ऊपर आती है, जो खुद ब खुद नहीं आती, ऑटोमेटिकली नहीं आती, इनका कोई देने वाला होता है, और नेमतों की निस्बत जो हमारा या किसी कौम का जो रवैया होता है, इट डज मैटर कि वो कौम किस तरह इस नेमतों के बारे में उसका रवैया क्या है, और नेमतों का तसलसल भी इसी रवैये पर मबनी मुनसर होता है कि कोई कौम किस नेमतों के साथ जो है वो क्या रवैया अख्तियार करती है। और ये सारी जो है वजूहात जो है ये कुरान बता रहा है कि नेमतों का तसलसल, नेमतों का होना और उससे मुतमत होना, उनके पीछे अखलाकी मोरल रीजन है, अखलाकी वजूहत होती हैं। और अल्लाह ताला ने यहां भी बताया कि हमने जो उसको जब उन्होंने जो है नाशुक्री की तो हमने उसको डैम को, अल्लाह ताला फरमाया कि हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब जब दूसरे मटेरियल साइंसेस के और दूसरे आर्कियोलॉजी के लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ एक जगह वीक हो गई थी इस डैम के अंदर, और जो है वो इस वजह से डैम टूट गया, लेकिन ये जगह वीक क्यों हुई? तो ये अल्लाह ताला जो है वो बता रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक वजह होती है, और अल्लाह ताला ऐसा करने वाला है। अल्लाह की कुर्बत माल और औलाद से नहीं है बल्कि नेक अमाल से और साले अमाल से। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे गौर करने का कहा गया है इन लोगों को, कुरैश मक्का को, ताकि ये आप जो है इसकी जो अजाब अलीम से बच सके। इसके बाद फिर सूरह फातिर है, ये मक्की सूरत है, 6 से 10 नबी में उतरी है, और इसमें भी जो मक्की मुतकबर की आदत थी उसको कानूनी सजा और जजा बताया गया है, उनके जरिए से उन्हें हलाकत की धमकी दी गई है, और यहाँ भी इस सूरत के अंदर भी इस्तकबार पर मबनी रवैयों की निशानदेही की गई। इस्तकबार यानी किबर और गुरूर और फख्र और लोगों को छोटा समझना दूसरों को, इसका जो रवैया था खासतौर पर कुरैशी मक्की की आदत जो थी जिसके अंदर मुबतला थी उसकी जो है उसको नुमाया किया गया है। तौहीद के ऊपर दलाइल दिए गए हैं बहुत सारे, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र का जहां भी मुतालबा किया गया है, और दलाइल में आफाकी दलाइल भी हैं और रबूबियत के, यानी अल्लाह ताला ने जो है कायनात से भी, मज़ाहिर कायनात से भी दलाइल लेके आए हैं, और अल्लाह ताला के रब होने के हवाले से जो उसने नेमतें लोगों को मुयस्सर की हैं उस हवाले से भी दलाइल हैं, और इसी वजह से नेमतों का जब जिक्र है तो नेमतों के शुक्र का भी मुतालबा किया गया है। और जो है वो बताया गया है कि ये जो तुम देखते हो मीठा पानी और खारी पानी, और फिर ये जो मोती देखते हो पानी के अंदर अल्लाह ताला ने रख दिए, और ये जो खारी पानी के अंदर ये जारे समुद्रों की बात है, इसके अंदर जो कश्तियों और जहाजों के चलने और जराए नकल हमल के जिस तरीके से अल्लाह ने इसको जरिया बनाया है, तो उस पर जरा गौर करो कि आज देख सकते हैं कि ये 1500 पहले बरस की बात है जब ये आयत उतरी, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ट्रेडिंग का जरिया और लोगों के जराए नकल हमल का यही समुन्दर है। फिर रंग बिरंगे मुख्तलिफ जायकों के फल पैदा किए हैं, देखें एक ही जमीन है, एक ही 2 फुट के फासले पे एक मुख्तलिफ जो है वो फल उगता है, दरख्त उगता है, उसका पौधा उगता है, और उसके फल ذائقے میں بالکل دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے اور سٹیبلائز کر رکھا ہے کس طریقے سے, اور ہر ایک اپنے ڈیزگنیٹڈ آربٹس ہیں کہ کوئی ایک جو ہے دوسرے کے آربٹس کو دوسرے میں نہیں چلا جاتا, انہیں ٹکراتا ہے. پھر انسان اور جانوروں اور مویشیوں کو غور کرنے کی دعوت, غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان ان پہ غور کرے. اور اسی طریقے سے جہاں توحید کی دعوت کے بڑے زبردست مثبت دلائل ہیں, اسی طرح شرک کی تردید بھی بڑے پرزور طریقے سے کی گئی ہے. فرمایا گیا کہ کیا تم ان تمام نعمتوں اور مظاہر قدرت جو جن کا ذکر ابھی ہوا, ان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کسی کا ہاتھ ہے؟ تو یہ خود دیکھ لینا چاہیے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہو گئی ہیں, آج تک کسی نے کہا ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے, چاند ستاروں اور ان ذرہ میں فلکی کو پیدا کیا ہے, ان بادلوں کو اس نے بنایا ہے, اس نے بارشیں برسائی ہیں؟ کسی نے نہیں یہ کلیم کیا. لیکن ایک ذات ہے جو یہ کہہ رہی ہے, تو اس کی بات پہ جو ہے غور و فکر کرو اور اس کو جانچو کہ کیا یہ بات صحیح ہے, اور اگر صحیح ہے تو پھر وہ ایمان لا اس بات کے اوپر جس بات کی طرف ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. پھر قانونی سزا و جزا کا ذکر ہے کہ اس پیغام کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے. پھر انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر پھر اختیارات عطا کیے گئے ہیں, کہ یہ بات دوبارہ بتائی گئی ہے. پچھلی سورت کے اندر بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا ہے, اور اس کو جو ہے وہ کائنات میں سے چوز کیا, اس نے اس کو جو ہے وہ چنا ہے, اور خود اس کو جو ہے اختیارات دے کر خلیفہ بنایا. یہاں پہ پھر وہ اسی ایسی بات کا ذکر ہے, اور جو ہے وہ ظاہر اس کے ساتھ احتساب کی بات ہے, اور اس کو اس خلیفہ کی جو ذمہ داری ہے اس کو جاننے کی بات ہے. لیکن فرمایا کہ اگر ہم نے اس کو یہ ذمہ دار تو بنایا ہے اور خلیفہ بھی بنایا ہے, لیکن اگر اس نے ناشکری کا اور انکار کا راستہ اختیار کیا تو لازماً پھر وہ گھاٹے کے اندر اور خسارے کے اندر رہے گا. پھر اس کے بعد جو ہے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اگر گناہوں پر جو ہے فوراً پکڑ لیتا تو پھر جو ہے وہ عذاب دینا شروع کر دیتا, تھوڑی زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا. پھر آخر میں خلافت اور وراثت کے سلسلے میں تین گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے, لوگوں نے اس کو جو ہے وہ لیا, اور اس کے بعد پھر امت کے لوگ جو ہے وہ تین گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ پہلے کے بارے میں کہا کہ وہ ظالم ہے, وہ گناہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں, یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, یہ عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی ان کو خلافت انسان کو عطا کی ہے, اور اس اور ان کو جو وراثت, اب یہ وراثت میں یہ امت اور یہ ذمہ داری ملی ہے, اس کا بھی وہ حق ادا نہیں کرتے, اور یہ اکثریت میں ہیں. دوسرے مقتصد جو ہے وہ گروپ ہے, اور یہ جو گروہ ہے مین رو ہے, اور یہ حسنات اور برائیوں میں برابر برابر والے لے ہو گئے. یہ عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کا حق جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کر پاتے, کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ خلافت کی جو ذمہ داری انسان کی, ان کو بھی کما حق کو پوری طرح ادا نہیں کر پاتے, یہ نہیں کرتے. تیسرا گروہ سابقین کا ہے, یہ سچے مومنین ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں, یہ دانستہ جو ہے معصیت نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی سرکشی نہیں کرتے, اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے گناہ جو ہوتے ہیں گناہوں میں نہیں پڑتے, اور مگر بھول چک سے کوئی بھی جو ان سے جو یہ چیز کوئی ہو جائے. تو یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حقیقی وارث ہیں, یہ بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین ہے جو ہے وہ, اس کے مضامین کا تو ہم کل جائزہ لیں گے, لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ ایک مکی سورت ہے, یہ بھی 6 سے 10 نبی میں ہوئی ہے, اسے قرآن کریم کے دل سے تشبیہ دی گئی ہے, اور ایک حدیث میں جو احمد اور ابو داؤد میں روایت کی گئی اسے قلب قرآن کہا گیا ہے. اس کی فضیلت میں بہت ساری اور بھی حدیث مروی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث جو ہے صحیح کے درجے میں نہیں پہنچتی ہے, سب ضعیف کے درجے میں ہیں. اس لیے اور جو ہے مفسرون بھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ صرف جو ہے فضیلت کے حساب سے, مطلب ان میں فضیلت بیان کی گئی ہے صرف. اس سورت کا سلوک جو ہے اس سورت کی واضح خصوصیات میں سے, اس کا بنیادی مضمون تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, فکر اس کے بڑے مختصر ہیں, پے در پے جو فواصل جو جن پہ آیات, ان الفاظ جن پہ آیات ختم ہوتی ان کو فواصل کہا گیا جاتا ہے, ان کی پے در پے جو تکرار ہے ان سے ایک خاص مزاج और एक खास शान दिखाई देती है सूरत के अंदर। और मुसलसल इंसान की अकल को अपील किया गया है और अकल को बेदार किया गया है। और इस सूरत के अंदर 45 मरतबा अल्लाह ताला ने ना ना जो है जिसके मानी हम भी, अल्लाह ताला यानी ये अल्लाह ताला की तरफ रेफर करती है ये जमीर, यानी और ये तौहीद के मजमून पे दलालत करती है कि किस शानदार तरीके से जो है 45 मरतबा ये जो है मजमून और या इस मजमून की निस्बत जो है वो बयान हुई है तौहीद के मजमून की। तो पढ़ने वाला अपने आप को इसकी जो ये जलाली फिजा है जिसमें अल्लाह ताला बार बार अपना जिक्र फरमाता है और अपने हवाले से चीजों का जिक्र फरमाता है, तो उस जलाली फिजा के अंदर पढ़ने वाला अपने आप को पाता है और जिससे गैर अल्लाह की नफी होती है और बार बार अल्लाह ताला की तरफ ध्यान और तवज्जो और अल्लाह ताला की तौहीद का जबान से इकरार और दिलो दिमाग और तबीयत पे फिर इसका असर होता है बहुत ज्यादा। और शायद यही वजह है कि मरने वालों के लिए जो है जो शख्स जो है नजा के आलम में है उस शख्स पर इसकी तिलावत करने को जो कहा गया है ताकि उसे सही तौर पर अल्लाह ताला की वहदानियत और तौहीद का यकीन हो जाए और आखिरत की तैयारी का एहसास हो और फिर वो शख्स जहनन इस्तकबाले आखिरत के लिए जो है वो तैयार हो, क्योंकि अब उसकी अगली मंजिल का जो है वो सफर है। इस वजह से इस सूरत की बड़ी अहमियत है। इस सूरत के मजामीन का जायजा इंशाअल्लाह ताला हम कर लेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।